स्वभाव नहीं है, ये स्वीकृति पहले हो। फिर मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव रागद्वेष से रहित होना है, और मैंने दिन भर में रागद्वेष अपना पराया करके मम इदम ये मेरा है ये मेरा नहीं है ऐसा करके मैंने दिन भर करा, वो मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा। मेरा स्वभाव क्या है? उससे अलग तो मैं शांत होकर के अपने स्वभाव की तरफ विचार करूँ। अब मैं अपने स्वभाव की तरफ विचार करता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता कि मेरा स्वभाव क्या है। तो फिर जो पंच परमेष्ठी का स्वभाव है सो मेरा तब फिर मैं पंच परमेष्ठी का विचार करता हूँ। पंच परमेष्ठी में से भी जो है लगेगा कि आचार्य उपाध्याय साधु तो हमारे जैसे ही हैं, खाते पीते हैं आते जाते चलते फिरते हैं, वो भी संसार में हैं, तो उनका क्या स्वभाव है? तो उनके पास जो रत्नत्र है उसका तो हम कर ही सकते हैं। हम रत्नत्र का विचार करें कि रत्नत्र साधक है, वो साध तो नहीं है पर रत्नत्र साधक है, तो उसको साधक बना करके किन्होंने क्या किया? तो अनंत भगवान ने चार घातीय कर्मों को नाश करके और चार गुण पाए, वो चार गुण मेरे भी हैं, अनंत चतुष्टय मेरा। और जब और चार कर्मों का नाश कर लेंगे तो सिद्ध बन जाते हैं, उनके जो गुण है वही मेरे पास भी है, वो सिद्धत्व की शक्ति मेरे पास हो गया। आपका चिंतन जो है यही तो आत्म चिंतन, इतने में तो लग जाएगा दो ढाई घंटे
नहीं है।
हाँ, हम शुरुआत करते हैं सिद्ध भगवान से सीधा, बल्कि अपने आत्मस्वरूप से। तो हमारा आत्मस्वरूप कैसे आएगा हमको अकेले? क्या एक मैकेनाइज प्रोसेस है क्या कि हमने इतना पाठ दोहरा लिया तो हो गया आत्मचिंतन? मैं आपको कोई एक फिक्स बता दूं कि आपको ये किताब है उसमें लिखा है आत्म संबोधन, उसमें कुछ गाथाएं हैं उनको पढ़ लीजिए। स्ट्रोक टेस्ट में भी आत्म संबोधन है, समाधि शतक में भी आत्म संबोधन है, आप पढ़ लीजिएगा, हो गया संबोधन। नहीं, हम देखें तो कि हमने दिन भर में क्या करा और क्या करने योग्य था, अपने आप जो है एक लाइन मिलती है कि नहीं हम, और फिर उससे ग्लानिंग होती है। ग्लानिंग होती है तो हम मैंने फिर कन्फेस करते हैं कि नहीं हुआ तो, नहीं तो हम तो स्वीकार ही नहीं करते। महीनों महीनों तक वो चीज स्वीकार नहीं करते जो हमने गलत किया। जब तक हम गलत को स्वीकार नहीं करते जब तक पवित्र होने का तो कोई उपाय नहीं। वो बिल्कुल सब आएगी, सब उसमें आएगा, सब उसमें आएगा। ये एक पैटर्न है इस तरह के सोचने का, मैंने आपको जो पैटर्न दिया एक ये है। दूसरा पैटर्न जो प्रचलित है, जो वर्तमान में भी प्रचलित है, वो यही है कि है वो गाथा कुलकुल स्वामी की कि अनंत भगवान का द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व के अनुरूप जो चिंतन करता है वो मोह लयम जाति, उसका मोह नष्ट हो जाता है, इसी को आत्मचिंतन बोलते हैं। तो आज यही चल पड़ा है प्रचार बहुत तेजी से इसी का है कि भगवान के द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व का विचार करें। अब द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा तो आपको आ सकती है, पर भगवान के द्रव्यत्व और गुणत्व का एहसास कर सकते हैं क्या? विचार कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, हमें कोई अड़चन नहीं। द्रव्य गुण की परिभाषा रटी है तो रटी रही परिभाषा याद कर लो कि द्रव्य वो है जो कि अनित्य है, अवस्थित है, नित्यावस्थितानि रूपाणि, जो अरूपी है वो द्रव्य है। ये द्रव्य की परिभाषा हो गई। ये गुण और पर्याय उनका समूह कहलाता है। और गुण उसे कहते हैं जो एक द्रव्य में रहते हैं दूसरे द्रव्य में नहीं रहते हैं, एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं जाते हैं, इस तरह विचार कर लीजिए। पर्याय है तो ये सब चारों गति में जीव जो है जीव की पर्याय है, नाना पर्याय होती है, हो गया द्रव्यत्व द्रव्य गुण पर्याय। लेकिन अब ये भगवान का जो शुद्ध द्रव्य हुआ है वो कैसे हुआ है, और भगवान के जो गुण पवित्र हुए उनकी जो पर्याय पवित्र हुई है उसका द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व की दृष्टि से विचार करना, ये ज्ञान का विषय तो है लेकिन अनुभूति का विषय तो अपना आत्मा ही। तो आजकल जो है उस ज्ञान के विषय को अपन अनुभूति का विषय मान लेते हैं, तो ऐसा ज्ञान भी ठीक है। मैं बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे अनंत के बारे में विचार करना, आपने वो रटा रटाया अनंत के बारे में विचार कर लिया, क्या हुआ आपको अनुभव? क्या आपको अनुभव? तो अपनी माली हालत का ही हो रहा है कि इधर पैर में दर्द है और 10 मिनट होने को है, भाई अब उससे ज्यादा नहीं कर सकते हम, क्या करें हम इतना चिंतन? तो चिंतन विंतन सब एक तरफ हो गया, आपके आ गए आप अपनी ओरिजिनल उस पर कि ये तकलीफ है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो फीलिंग क्या हो रही? तो इसमें क्या होता है कंसोलेशन, मैं इसको एक कंसोलेशन सब देता हूँ। इस तरह करके हम आजकल अपने को सांत्वना दे लेते हैं कि किया तो है हमने, और ठग लेते हैं अपने को, आत्म प्रवंचना जिसको कहते हैं। ये सब चीजें तो बहुत बात की हैं, पहले तो तल्लीनता आनी चाहिए भगवान की पूजा में, भक्ति में और अपनी आलोचना में। ये तल्लीनता जब तक नहीं आती है तब तक कोई और भी चीज करते रहो, वो सब ज्ञानात्मक विकल्प तो है लेकिन अनुभवात्मक नहीं है। इस अंतर को थोड़ा सा अपने को विचार करना चाहिए कि मेरे ख्याल से तो आत्मचिंतन करने वाले से ज़्यादा कंसंट्रेट पूजा करने वाला हो जाता है, वो भक्ति में लीन हो जाता है, उसको कुछ दिन दुनिया से मतलब नहीं, पैर में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तो कितनी तकलीफ है, भूख लगी है कि नहीं, तो कोई इसको शुद्ध बुद्ध नहीं है। वो जो गैर शुद्ध वाली स्थिति तल्लीनता वाली, वो ज़्यादा कर्मों की निर्जरा करेगी। वनस्पति इसके कि हम विचार कर रहे हैं, टेंस अलग हो रहे हैं कि अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है आत्मा और कैसा है। अब जिसका ज्ञान ज़्यादा होगा, क्षय उपशम ज़्यादा होगा, उसकी समझ में आएगा। जिसका क्षय उपशम नहीं है तो उसको तो बेचारे का कल्याण ही नहीं है। अगर जिसको इतनी बातें नहीं मालूम हो ज्ञान की, तो उसका तो कल्याण ही नहीं होगा फिर। नहीं, उसका कल्याण कैसे होगा? उसका कल्याण इसी में है कि वो भावात्मक है और शांतिपूर्वक नाना विकल्पों को हटा करके और शांत बैठा, सुख और दुख की स्थिति में समता रखता है। मैं तो सोचता हूँ बड़े से बड़ी साधना है। अभी हम लोग परसों जो है, आप कल परसों तो दो दिन एब्सेंट रही, परसों वैसे ही बैठे थे, तो मैं शाम को कह रहा था कि देखो अपन बाहर की साधना देखते हैं कि इनकी कितनी, इनकी साधना इतनी, इनकी साधना इतनी, इनका उपवास, उस दिन उपवास था चौदस्ती, कि इनका उपवास है, इनकी बड़ी साधना है फलाना। मैंने कहा मैं इसको साधना नहीं मानता, मैं भले ही उपवास कर रहा हूँ लेकिन ये साधना नहीं, ये तो साधना का एक अंग हो सकता है लेकिन साधना नहीं। साधना तो वो है जबकि मैं सुख दुख दोनों स्थितियों में समता रह सकूं। जितनी अधिक से अधिक हमारा पूरा जैन दर्शन जो है इस समत्व की साधना पर टिका हुआ, चाहे आप काय क्लेश करो, चाहे आप उपवास करो, उनोदर करो, जितने अंतरंग बहिरंग तक स्वाध्याय भी करो, पर समता बनी रहनी चाहिए। स्वाध्याय में विषमता कब आती है? स्वाध्याय करते हैं, थोड़ी देर स्वाध्याय करा और देखो इसमें तो ऐसा लिखा है और ये लोग तो ऐसा कहते रहते हैं, अब ये क्या है? ये आप स्वाध्याय कर रहे हैं या उनसे टैली कर रहे हैं आप? ये विषमता तो है ही, ठीक है वो वैसा कहते होंगे, वो किसी अपेक्षा से कहते होंगे, मैं तो अपना स्वाध्याय कर रहा हूँ, मेरे अंदर उनके प्रति कोई क्षोभ नहीं है, ये समता कहते हैं। वो सबसे बड़ी, माने हमारा जो अप्रोच है वही होना चाहिए। अब हमारा अप्रोच ही गड़बड़ है। आज प्रभावना वाली चर्चा चली थी, तब भी मैंने यही बात कही कि हमारा तो प्रभावना का क्राइटेरिया ये हो गया है कि मॉब कितना था, भीड़ कितनी थी, कितने लोग आए हैं, ये हमारे प्रभावना का अंग हो गया। तो जबलपुर में ऐसा हुआ था कि लोग कहने लगे कि अरे आचार्य श्री का प्रवचन में 40,000 आदमी थे आज तो जबलपुर में। हमने कहा ठीक है, इसी से आप आचार्य श्री को मान रहे हैं। हमारे आचार्य श्री बिना 40,000 के भी हैं। हमारे आचार्य श्री 40,000 आए से इसलिए आचार्य श्री हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कल राजीव गांधी थे उस समय, दो दिन पहले। हमने कहा राजीव गांधी आए थे, उनमें 2,00,000 जनता थी, तो भी बड़े हो गए हमारे आचार्य श्री से, क्योंकि उनको 2,00,000 आई थी, महाराज में 40,000 आए। ये क्राइटेरिया है क्या? और हम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम कि हम इन बाहर की चीज़ों को ही बना क्राइटेरिया, हमारी अप्रोच ही ठीक नहीं बैठी। इसी तरह धर्म ध्यान के बारे में कि तपस्या भी करेंगे तो किसके लिए? मुझे समता आनी चाहिए, मुझे समता आई कि नहीं, मुझे संतोष आया कि नहीं। श्रावक के लिए संतोष, साधु के लिए समता, सुख और दुख, हर्ष विषाद, सम और विषम, सब परिस्थितियों में जो है समान है। उसका मन नहीं डोलता, किसी ने गाली दे दी थोड़ी देर के लिए लगेगा कि पता नहीं किस कर्म के उदय से ऐसा करा है।
महाराज जी उसको कुछ समझ में नहीं भी आया आज प्रवचन से, तब भी उसका पुण्य का लाभ तो होता ही है, क्योंकि वो उसकी भावना ऐसी है कि वो आपके प्रवचन सुन रहा है या कुछ पुण्य करने का,
वो तो है ही, पर उसको विजन तो क्लियर होना चाहिए। बस तो ये है, विजन क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान हो उसको, उसको ये क्लियर है कि ये, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कोई पशु जा रहा है और उसको सिर्फ ये लगा कि मार्ग तो यही सच्चा है, बस इतना ही, इतनी फीलिंग पर्याप्त है। आप मेरी बात बिल्कुल मत सुनिए, पर आपको ये लगे कि जो ये कहा जा रहा है, भगवान की वाणी जो कही जा रही है, वो सच्ची है। बस मैं समझ कुछ नहीं पा रहा, मेरा ज्ञान थोड़ा सा,
वो श्रद्धा वाली,
ये
श्रद्धा भक्ति
आपके चिंतन में ऐसा क्षण आता है कि समय विचार,
ऐसा संभव ही नहीं। जब तक मन है, तब तक विचार है। शुक्ल ध्यान तक में पृथक वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार किसी एक पर ही है, लेकिन अविचार की स्थिति नहीं है। अविचार की स्थिति में भी जो है बदलाहट भर नहीं होगी। अविचार एकत्व वितर्क अविचार है, अविचार मतलब बदलना नहीं। अर्थ व्यंजन संक्रांति इसको विचार कहते हैं, अर्थ से अर्थांतर, पर्याय से पर्यायांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर, जो हम निरंतर एक विचार से दूसरे विचार पर ज्ञानात्मक विकल्प करते हैं, वो एकत्व वितर्क विचार में रुक गए, पर किसी एक पर तो चल रहा है, टिका हुआ है। किसी एक पर तो टिका है, वो उससे नहीं हट रहा है, वो विचार निरंतर चल रहा है। विचार शून्य स्थिति तो जब मन के पार हो जाए सिद्ध भगवान, तब अनंत के भी जो है मनोयोग कहा गया है उपचार से। सिर्फ काय योग बचा है, मन और वचन योग भी उपचार से उनके माना गया कि अभी शरीर में बैठे हैं इसलिए काय योग भी है और वचन जो है उनके निकल रहे हैं, भले ही अनिहित निकल रहे हैं, कोई इच्छा नहीं फिर भी निकल रहे हैं, पर फिर भी वचन योग है। और वचन बिना मनोयोग के, जिसको संगी पंचेंद्री है तो उसके बिना मनोयोग के वचन योग नहीं होगा। दो इंद्री के तो बिना मन के भी वचन योग होता है, लेकिन इसके मन सहित हो, इसलिए उपचार से मान। जब तक मन है तब तक
मनोयोग ये जो अनुस्थिति जो मानते हैं असल होती है, कुछ थॉटलेस
नहीं, थॉटलेस नहीं।
योग आयोगा चल रहा है ना,
उसमें थॉटलेस होता ही नहीं। किसी एक थॉट पर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, दूसरे थॉट पर नहीं जा रहे हैं, यही विचार शून्यता है।
वो भी यही कहते हैं कि किसी चीज पे आपका कंसंट्रेशन
करें, कंसंट्रेशन के लिए नहीं बोलते हैं थॉट है, बस विचार करने विचार आने मत दो। वो कैसे विचार तो शून्य तो ही नहीं,
वो एक प्रक्रिया है। विचार शून्य वो जो कहते हैं हम उसको या तो ठीक नहीं समझ पा रहे हैं या वो नहीं बता पा रहे। विचार शून्य का वहाँ दूसरा अर्थ ये है कि मैं अपनी तरफ से कोई विचार नहीं कर रहा हूँ, जो विचार मेरे भीतर आ रहे हैं सिर्फ उनका पीछा कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ साक्षी भाव से। एक थॉटलेस होने की प्रोसीजर ये भी है, मैं अपने अंदर आते हुए विचारों का सिर्फ ज्ञाता दृष्टा, अपनी तरफ से कोई विचार नहीं कर रहा हूँ, ना किसी विचार को अच्छा कह रहा हूँ ना किसी विचार को बुरा कह रहा हूँ। विचार आ रहे हैं निरंतर, पर मैं अच्छा बुरा कोई डिवाइडेशन नहीं कर रहा और शांत। ये भी समझा, ये विचार शून्यता है। भारी चर्चा हुई आज आहार के बाद इसी पर, और शरीर में बहुत डिसेक्ट करके देखा गया मेडिकल साइंस वालों ने, तो कहीं उसको मन वन मिला ही नहीं। आठ पाखड़ी वाले कमल की हृदय देश में रचना है, उसी को द्रव मन कहते हैं। भाव मन तो शुभ समात्मक है, जितने में आत्मा है उतने में भाव मन है, पूरे शरीर में। यहाँ भी पिन चुभेगी तो आपको मस्तिष्क कवर पहुँच जाएगी। अब चाहे मेडिकल साइंस इसको डिफाइन करें, चाहे आप एक शब्द में कह दें कि जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ पर संवेदनीयता है, और जहाँ जहाँ संवेदनशीलता वहाँ वहाँ मन है।
साइंस में बोलते हैं कि फ्रंटल वो अपनी ब्रेन जो साइलेंट एरिया है, तो मन की स्थिति को नहीं मानते हैं फ्रंटल वो, और जो सब में सारे सेंटर्स
हमें कोई बाधा नहीं उससे। फंक्शन जो होता है पकड़ पाता है साइंस उसको, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है इसको साइंस पकड़ रहा है, लेकिन ब्रेन का रेगुलेटर कौन है? एक डेड बॉडी में भी वो ब्रेन बता देगा कि ये ऐसे फंक्शन करता है, तब वहाँ तो फंक्शन बता सकते हैं आप, बस चेतना से फंक्शन हो रहा है एक्चुअली। उस चेतना को तो वो पकड़ ही नहीं पाता, वो तो फंक्शन बताता है कि ब्रेन का फंक्शन ये। हम देखें कि वो फंक्शन जो चल रहा है, जैसे मैंने सुबह उदाहरण दिया था कि आँख है, मुझे बताइए कौन आँख देखती है? क्या आँख देखती हो तो फिर जिसमें से चेतना निकल गई उसकी आँख से भी दिखना चाहिए। आँख नहीं देखती, आँख तो ऑपरेटस की तरह, इसी तरह ब्रेन एक ऑपरेटस है, उसमें इस तरह से सेटअप किया गया है सब कुछ की चेतना के माध्यम से हम अपनी विचार शक्ति को आपके कोई माध्यम दे सकते हैं। बस जिनके विचार करने की क्षमता है, जिनके देखने की क्षमता, उनको ये चाहिए, इसके बिना नहीं देख पाएंगे। क्षमता हमारे भीतर हो और अगर ऑपरेटर्स गड़बड़ हो जाए तो कहते अंधे हो गए दिख नहीं रहा है, और फिर आँख ठीक हो जाती तो दिखने लगता है, कहाँ से आ गया वो भीतर था। इसी तरह मन में चेतना भाव मन तो है, लेकिन उसको माध्यम चाहिए। ब्रेन मान लीजिएगा कि वो द्रव मन की तरह काम करता है, जिसके माध्यम से हम पूरे शरीर के बारे में जो कुछ भी हो रहा है उसका विचार करें। हैंडल करने वाला कौन है कंप्यूटर को? डिजाइन तो किया है पर कंप्यूटर का फंक्शन भी मालूम है, पर उसको हैंडल कौन कर रहा है? वो तो अपनी मौजूदा स्थिति का चिंतन करना, और ये मेरी वास्तविकता नहीं है, ये चिंतन करना मेरी वास्तविकता कुछ और है। पर अकेले वास्तविकता का चिंतन कर लेना और कंसोलेशन कर लेना अपनी मौजूदा हालत से, अपने को मैंने डिनाइल ऑफ रियलिटी जिसको कहते हैं, अब वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये कि आप शरीर में बैठे हो, गए आप आत्मा पर बैठे तो आप शरीर में, तो शरीर क्या है इसका विचार भी तो करना पड़ेगा। तो उसमें लिखा है कि जीव और अजीव इन दोनों को जाने बिना कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, अकेले जीव को जान के नहीं हो सकता, अजीव को भी जानना पड़ेगा। ठीक वैसा ही इसलिए एकत्व भावना और अन्यत्व भावना दोनों रखना पड़ेगा। एकत्व में तो मैं अकेला हूँ, अन्यत्व में ये मैं नहीं हूँ, दोनों बात कहना पड़ेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव। मैं एक अकेला हूँ ये तो पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ ये मुझे ध्यान, जबकि मैं मान के तो ही बैठता हूँ कि शरीर हूँ, इसकी हर पीड़ा से मुझे पीड़ा होती है। अभी तो मेरा अपने से एकत्व नहीं हुआ, शरीर से ज्यादा एकत्व, जबकि शरीर से होना चाहिए था अन्यत्व और अपने से होना चाहिए था एकत्व। बारह भावना का चिंतन, बारह भावना का चिंतन ही आत्मचिंतन है। मैं तो सोचता हूँ वस्तु स्वरूप का बारह भावना के द्वारा सही चिंतन होता है। हाँ, पहले बोधि दुर्लभ ही रखा गया है, फिर उसके बाद धर्म भावना रखी गई, पर पुराने उसमें तो यही पैटर्न मिलता है, सूत्र जी में भी वही है, धर्म स्वाध्याय। हाँ, धर्म स्वाध्याय अनित्याशरण संसार एकत्वानुत्वा सुच्याश्रो संवर निर्जरा बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानि चिंतनम अनुपेक्षा। धर्म स्वाख्या अंत में जो है धर्म भावना है, वो अपन उसको सूत्र जी को बहुत पुराना 2000 साल पुराना माने, किसी को फॉलो करें। वो क्या हुआ है चैडाला में, जरूर आगे पीछे लोग बोलने में बिन जांचे बिन चिंते सकल धर्म सकल सुख देन और धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान दुर्लभ है संसार में एक। यहाँ भी खत्म करते कोई लोग, और कोई लोग धन कन कंचन पहले बोल के फिर उसके बाद जो है ये बोलते हैं। और कुछ
में
बाद में रखा, पर सूत्र जी का मैं सोचता हूँ ज्यादा पर लॉजिकल तो बोधि दुर्लभ बाद में ही आएगी। धर्म के माध्यम से ही तो बोधि दुर्लभ जो केवल ज्ञान है उसकी प्राप्ति होती है, अगर हम ऐसा विचार करेंगे तो धर्म भावना पहले आएगी। पर आचार्य भगवंत ने क्यों पहले बोधि दुर्लभ रखा और लास्ट में क्यों कहना चाह रहे हैं, तो उनका भी लॉजिक है कि हम आपको बोधि दुर्लभ जो दुर्लभता बता करके ये बताना चाह रहे हैं कि वो किससे प्राप्त होगी, धर्म से ही प्राप्त हो। अंत में इन सब का कंक्लूजन कहाँ आएगा, 11 भावनाओं के बाद धर्म भावना ही मुख्य है इन सब के बीच, तो वहाँ भी लॉजिक सर्वान सिद्धि में उसको एक्सप्लेन किया है कि हमने धर्म भावना को क्यों होने दिया। क्या क्रम से उठता कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्रम तो कभी दोनों के लॉजिक है।
सांसारिक कार्यों में ये जो कार्य करते वक्त मोह और स्वार्थ और एक कर्तव्य, इन तीनों को किस प्रकार से आप जो कार्य कर रहे हैं मोह की परिभाषा में आएगा या स्वार्थ की परिभाषा में आएगा या कर्तव्य की परिभाषा?
मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ, आपको सुन लिया मैंने प्रश्न, मेरे दिमाग में एक चीज जो आई है वो देख लूँ मैं।